श्याम फिर बोला, थोड़ा प्यार से भी बात कर लिया करो। कोर्ट में जैसे झगड़ते हो, असल जिंदगी में भी वैसे ही बोलते हो। उसने सिर हिलाया। तुम्हारी टीम पर भी तरस आता है मुझे, और तुम्हारे क्लाइंट्स को भी आखिरकार मुझे ही डील करना पड़ता है। फिर उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। मैं तुम्हें इतने सालों से झेल रहा हूँ और तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की, जबकि मैं हमेशा तुम्हारी भलाई ही सोचता हूँ। ज्ञान कपूर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अच्छा हुआ तुम खुद ही बात पर आ गए, मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। श्याम ने उसकी तरफ देखा। तुमने उस लड़की को मेरी टीम में क्यों रखा? ज्ञान ने सीधे सवाल किया। अपनी टीम में क्यों नहीं ले गए? उसकी आवाज़ में झुंझलाहट साफ थी। उसे कुछ आता जाता नहीं है, ज्ञान ने साफ कहा, और मैं उसे झेल नहीं सकता। कमरे में एक बार फिर वही गहरी भारी चुप्पी उतर आई। पहली बात, श्याम खन्ना ने गंभीर होकर कहा, मैं उसे अपनी टीम में इसलिए नहीं ले गया क्योंकि मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ और वो मेरा काम संभाल नहीं सकती। दूसरी बात, मैंने उसका इंटरव्यू लिया है, वो काबिल लड़की है, आप देखोगे थोड़े समय में सीख जाएगी। ज्ञान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बताता हूँ कि तुमने न्यारा बेदी को क्यों चुना। इसकी बड़ी बहन निया के कारण। कॉलेज में वो हमारी सीनियर थी, और याद है हमारे कॉलेज में भी तुम उसके पीछे थे, मगर उसने तुम्हें कभी वैसा भाव नहीं दिया। उसने चेहरा बनाते हुए और गंभीर होते हुए कहा, कहो तो और कुछ बातें याद दिलाऊं तुम्हें? श्याम खन्ना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं सोच रहा हूँ इसकी बहन भी बहुत काबिल वकील है, अगर वो हमारे साथ आ जाए तो हमारी फर्म की रेप्यूटेशन और बढ़ जाएगी। ज्ञान कपूर ने थोड़ा ठहराव लिया, फिर हंसी के साथ कहा, और देखो वो तुम्हें घास भी नहीं डालती, तुम्हारी फर्म कभी ज्वाइन नहीं करेगी, इतना तो अभी मुझे पता है। हाँ तुम चक्कर काट रहे हो, मगर वो तुम्हें नहीं देखती, तुम्हें सच जानना चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। जब तुम सब जानते हो तो फिर मुझे ऐसा क्यों कहते हो? श्याम खन्ना ने हौले से कहा, लेकिन आवाज़ में गंभीरता थी। मैं निया के साथ शादी करके सेटल होना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम मेरा काम अपनी असिस्टेंट के रूप में देखो, वो बहुत काबिल लड़की है, तुम खुद कहोगे इतनी अच्छी लड़की मैं अपनी टीम में लेकर आया। श्याम खन्ना मस्का लगाते हुए मुस्कुराया। ज्ञान कपूर ने हल्का सिर हिलाया, जैसे मान भी लिया हो। तो ठीक है, अब मेरी पूरी नज़र उस पर रहेगी, मैं देखता हूँ कि उसकी काबिलियत बेकार ना जाए, ठीक है ना? मेरी पूरी नज़र सिर्फ न्यारा बेदी पर है। लेकिन वो नहीं जानता था कि यही नज़रें धीरे धीरे न्यारा के दिल में उतरने वाली थी। तुम्हें कभी नींद ना आए, श्याम खन्ना थोड़ा खड़ा हुआ और गंभीर स्वर में बोला, बस मुझ पर ही नज़र रखनी है, मेरा अलावा किसी और पर नहीं। खुद को संभालना भी नहीं आता, किसी लड़की के साथ अफेयर चला ले अब तक, इसीलिए सिंगल हो और हमेशा सिंगल ही रहोगे। इतना कहकर वो धीरे धीरे ऑफिस से बाहर निकल गया। लेकिन ज्ञान कपूर को नहीं पता था कि सिंगल रहना अब मुश्किल होने वाला था, खासकर जब न्यारा उस उम्र में थोड़ी छोटी सी और बेहद काबिल धीरे धीरे उसकी दुनिया में आ रही थी। आर्यन राजवंश ने सानवी को फ़ोन किया, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं, तुम रेडी रहना। ठीक है, सानवी ने संक्षेप में जवाब दिया। दरअसल कल ही आर्यन ने उसे फ़ोन करके बताया था कि उसके दोस्त अयान की शादी की पार्टी है, उसी दिन ही सारा और इमरान का निकाह भी था और उनकी शादी की पार्टी साथ ही रखी गई थी। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी एक अलग शादी की पार्टी होने वाली थी जहां सबको जाना था। आर्यन चाहता था कि सानवी शादी के लिए कुछ नया पहने, उसने उसे शॉपिंग पर चलने के लिए कहा था, खुद उसके लिए कपड़े खरीदना चाहता था, लेकिन सानवी ने साफ मना कर दिया। शादी चाहे जो भी हो, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और वो आर्यन के एक भी पैसे से शॉपिंग नहीं करने वाली थी। ये फैसला वो पहले ही कर चुकी थी और इसमें कोई समझौता नहीं था। रिया ने उसकी जिद समझ ली थी, उसने हंसते हुए कहा था, इतनी टेंशन मत लो, खूबसूरत दिखने के लिए नया खरीदने जरूरी नहीं होता, मेरे पास एक गरारा सूट तैयार है, तुम वही पहन लेना। हालांकि रिया ने बुटीक पर काम करना छोड़ दिया था, फिर भी उसका सिलाई से रिश्ता कभी टूटा नहीं, वो अब भी कभी कभी कपड़े डिजाइन करती रहती थी। आजकल वो थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम भी कर रही थी, कभी कभी कोई ऑर्डर मिल ही जाता था और उसी में उसका मन भी लगा रहता था। आर्यन जैसे ही बिल्डिंग के नीचे पहुंचा, उसने सानवी को फोन की जगह एक छोटा सा मैसेज किया, नीचे आ जाओ। उस वक्त फ्लैट में सानवी बिल्कुल अकेली थी, कीर्ति और रिया दोनों रेस्टोरेंट जा चुकी थी। सच कहें तो उसका मन बिल्कुल नहीं था आर्यन के साथ जाने का। आर्यन का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था, वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने जा रहे थे, फिर भी आर्यन बार बार ये जताता रहता था कि वो उससे नाराज है। उसका यूं बार बार कहना अब सानवी को चुभने लगा था, वो कितनी बार माफी मांग चुकी थी और अब तो वो उसके साथ एक समझौते की शादी तक के लिए तैयार हो गई थी। इसके बाद भी अगर गुस्सा खत्म नहीं हुआ तो शायद गलती से ज्यादा कुछ और ही था, ये ख्याल उसके दिल में बार बार उभर आता। कुछ पल बाद वो बिल्डिंग से बाहर आई। आर्यन गाड़ी में बैठा था, इधर उधर देखते हुए जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक उसकी नज़र सानवी पर पड़ी और वहीं टिक गई। सानवी ने व्हाइट कलर का गरारा सूट पहना हुआ था जिस पर बहुत हल्का सा और नज़ाकत भरा वर्क किया गया था, इतना सधा हुआ कि वो उसकी सादगी को और उभार रहा था। सूट का गला बेहद खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया था और उसके साथ मैच करता हुआ दुपट्टा उसने बड़े सलीके से ओढ़ रखा था, जिसके किनारों पर लगी महीन लेस उसे और भी एलिगेंट बना रही थी।
कानों में उसने छोटे से झुमके पहने थे जो हर हल्की सी हरकत पर नरम सी आवाज करते हुए उसकी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे। पैरों में जूतियां थीं, न ज्यादा ऊंची न ज्यादा चमकदार, बस उतनी जितनी उसकी शख्सियत से मेल खाती थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिना किसी बनावटी चमक के, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और आंखों में काजल। वो सचमुच बहुत प्यारी लग रही थी। आर्यन उसे लगातार देखता रहा, इतना कि उसे खुद एहसास ही नहीं हुआ कि वो अपनी नजरें हटाना भूल चुका है। सानवी गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी और अब उसे भी अजीब सा महसूस होने लगा था। आर्यन ने एक पल के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटाई थी। जैसे ही उसने आकर गाड़ी का दरवाजा खोला, आर्यन को होश आया कि वो कितनी देर से उसे देखे जा रहा है। सानवी गाड़ी के पास आकर बैठ गई। क्या हुआ, उसने हल्की सी झिझक के साथ पूछा। मैं अच्छी नहीं लग रही। असल में वो खुद भी यही महसूस कर रही थी कि शायद उसमें कुछ कमी रह गई है, तभी आर्यन उसे इस तरह देख रहा था। नहीं नहीं, आर्यन तुरंत बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो गाड़ी में आकर बैठ चुकी थी। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। आर्यन ने सीट बेल्ट लगाई, इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन उसके भीतर कुछ भी सामान्य नहीं था। वो चाहता था कि सानवी उसकी तरफ ना देखे, क्योंकि अगर वो देख लेती तो शायद उसके मन की हलचल पकड़ लेती। उसका दिल कर रहा था कि वो बस उसे देखता ही रहे, बिना पलक झपकाए, बिना किसी डर के। गाड़ी चलाते हुए भी उसकी नजर बार बार चोरों की तरह सानवी के चेहरे पर चली जाती। उसकी आंखें, जिनमें आज अजीब सी नरमी थी, और होंठ, जो खामोशी में भी कुछ कह रहे थे। आर्यन को खुद पर गुस्सा आ रहा था। ये सब वो नहीं चाहता था, या शायद चाहता था मगर मानना नहीं चाहता था। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि गाड़ी रोक दे, बस एक पल के लिए उसे अपनी बाहों में ले ले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, सिर्फ महसूस करे कि वो सच में उसके पास है। लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे को सख्त कर लिया। ये सब दिखाना मना था, ये सब सोचना भी शायद मना था। वो जानता था आज वो उसे अपनी मंगेतर के रूप में सबके सामने पेश करने वाला है, और शायद यही वजह थी कि उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था। उसने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी, जैसे इस उलझन से आगे निकल जाना चाहता हो, लेकिन उसकी नजर अब भी हर कुछ सेकंड में सानवी के चेहरे पर लौट आती थी।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें।